صدق الله العظيم.
The translation of the holy verses reads as, In the name of Allah, most gracious, most merciful. Corruption has appeared on land and sea. Because of the evil men's hands have done. And so, He will make them taste the fruit of some of their doings, so that they may turn back from evil. Say, journey through the land and see how those before you met their end. Most of them ascribed partners with God. The Prophet says, Set your face to the right religion. Before that day comes from God, which cannot be averted. On that day, mankind will be parted in two. Those who rejected the truth will bear the burden of that rejection. And those who did good deeds will have made good provisions for themselves. For them, He will reward out of His bounty those who believe and do good deeds. He does not love those who reject the truth. Thank you.
I now request Professor M.P. Sharma, Dean, Faculty of Humanities, to welcome Sri Sri Ravi Shankar.
रविशंकर जी, साथी अध्यापक गण और मित्रों, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी विद्यमान हैं और हम उनके प्रवचन का, उनके सिद्धांतों का, उनकी टीचिंग्स का आज लाभ उठाएंगे। मैं जामिया के बारे में कुछ बातें यहां कहना चाहता हूं, वो इसलिए कि जामिया अपनी स्थापना से लेकर आज तक मूल्य आधारित शिक्षा देती रही है और मेरे विचार से ऐसी अकेली संस्था है जहां आरंभ से ही छात्रों में मूल्यों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और सद्भाव, हार्मोनी, राष्ट्रीय एकता और जो वैल्यू समाज में धीरे धीरे गायब हो रही है उन्हें सिखाने पर बल दिया जाता है। मैं एक वाक्य बुराना इस अवसर पर बताना चाहता हूं। मुझे किसी ने बताया था कि जब हमारे विश्वविद्यालय में नौकरी के लिए आवेदन होता था तो उनसे ये पूछा जाता था कि आपकी काबिलियत क्या है और साथ ही ये भी पूछा जाता था कि आपकी जिम्मेदारियां क्या है। तो यदि कोई छोटे पद पर नियुक्त हुआ है और जब ये पता चलता था कि उनकी जिम्मेदारी अधिक है, परिवार में चार या दो या तीन बच्चे हैं और बाकी लोगों का भी खर्चा है, तो वेतन उनकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाता था और यदि कोई हायर पोस्ट पर है और उनकी कम जिम्मेदारी है तो उनका वेतन कम भी होता था। अब तो स्थिति जब बदल गई, जामिया का पूरा देश, पूरा विश्व बदल गया, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अपने विद्यार्थियों को जामिया में जहां इस्लामियत की शिक्षा देते हैं वहीं हिन्दू धर्मशास्त्र भी पढ़ाया जाता है और भारतीय धर्म और संस्कृति भी पढ़ाया जाता है। तो जामिया भी इस दिशा में काम कर रहा है। हम जानते हैं कि दुनिया में जिस तरह का संकट आज है हमारे सामने, वैसा शायद कभी नहीं था और विश्व के स्तर पर जिस तरह के आपाधापी एक दूसरे पर एक दूसरे देश पर कब्जा करने की स्थिति, हिंसा, मारपीट और न जाने किस तरह की चीज की जिंदगी हम अपने आसपास देख रहे हैं। सुबह जब हम घर से निकलते हैं तो ये पता नहीं चलता कि शाम को पहुंचने में कितनी देर होगी या पहुंच भी पाएंगे या नहीं। ऐसा कल्पना से भी बाहर की चीज है कि कोई व्यक्ति सड़क पर जिसको जानता नहीं है और यदि उसकी कार दूसरी कार से टकरा जाए तो हिंसा में उतार हो जाता है। हालत ये तक होती है कि डिलिबरेटली उसका मर्डर भी कर दिया जाता है। तो इस तरह का माइंड हम अपने आसपास देख रहे हैं और निरंतर इस तरह का वायलेंस हमारी सोसाइटी में हमारे बीच है। ऐसे समाज के बीच श्री श्री रविशंकर जी की आर्ट ऑफ लिविंग, जिसकी स्थापना उन्होंने की और जिसके केंद्र विश्व में लगभग 150 देशों में चल रहे हैं, मैंने टेलीविजन पर कई बार उनको सुना है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम अपने आसपास तो देखते हैं लेकिन अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि हम क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम अपनी सोच को किधर ले जा रहे हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि थोड़ी देर के लिए सोचें और दुनिया में कुछ योगदान यदि कर सकते हैं तो उस पर भी विचार करें। गुरुजी इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न देशों में जो उनको रिकग्निशन मिला है, सम्मान मिले हैं, उनके काम को सराहा गया है, भारत नहीं भारत के बाहर, तो हमें यह अवसर मिला है कि हम उनको सुने, उनसे जानें और सीखें कि हम क्या कर सकते हैं। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, पंक्ति दोहे की, कि मुझको कहां ढूंढता बंदे मैं तो तेरे पास में। ये हालांकि अलग संदर्भ में बात कही गई है लेकिन जिस चीज को हम अपने बाहर तलाश कर रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं, आसपास देखते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, भाषण करते हैं, हम उस पर अमल करने का प्रयास कभी नहीं करते। हमारे देश में मध्यकाल के संतों ने इस पर विचार किया और कहा कि जब तक हम अपने अंदर के अंधकार को, अपने अंदर की हिंसा को, अपने अंदर के वायलेंस को, अपने अंदर के अज्ञान को दूर नहीं करेंगे तब तक हम बाहर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी यह है कि हम अपने सेल्फ को, आत्म को सुधारें। घृणामुक्त समाज की बात करते हैं तो उस घृणा को अपने अंदर से गायब करें, हटाएं उसे और जिए तथा दूसरों को भी जीने दें। तो आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से श्री श्री रविशंकर जी इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। हम उनके आज के इस आज की प्रस्तुति से लाभान्वित होंगे। मैं जामिया की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि हम ईश्वर ने दीर्घायु दे और इस
शुक्रिया प्रोफेसर एमपी शर्मा, डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज। अब हम श्री श्री रविशंकर जी का खैर मकदम करते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं और उनको फेलिसिटेट करने के लिए हमारी एक स्टूडेंट, उनका नाम निदा खालिद है, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी, वो श्री श्री रविशंकर जी को एक बुके पेश करेगी। हमारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर मिस्टर ब्रजेश भारद्वाज जी श्री श्री रविशंकर जी को एक बुके पेश करेंगे।
मैं श्री श्री रविशंकर जी से गुजारिश करती हूँ कि वो हमारी ऑडियंस को आकर के मुखातिब करें. आई रिक्वेस्ट श्री श्री रविशंकर जी टू प्लीज एड्रेस दी ऑडियंस नाउ.
नमस्ते सलाम अलैकुम. आपने हमको बुके देकर के संदेश को दे दिया. जो मुझे कहना था आपने कह दिया. हम एक बुके हैं. द ग्लोबल सोसाइटी इज अ बुके. सीइंग दैट देयर इज अ रेड फ्लावर, देयर इज अ व्हाइट फ्लावर, देयर इज कॉरोनेशन, देयर इज लिली, अलग अलग सब तरह के फूलों से बुके बनते हैं. जब हमें भूल जाते हैं हम भूखे हैं और हम चाहते हैं सब एक टाइप का हो, वहां शुरू होता है समस्या. घरों में भी एक घर, हर घर में समस्या होती है. यदि 10 आदमी होते हैं घर में या 5 आदमी होते हैं, 10 तो आजकल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एक घर में 5 लोग होते हैं तो 5ों लोग अलग अलग दुनिया में रहते हैं. इन दुनियाओं के बीच में कोई संपर्क नहीं होता. तब वैमनस्य मनस्ताप ये सब शुरू होता है. आज का टॉपिक आपने दिया वर्ल्ड पीस. फॉर वर्ल्ड पीस टू हैपन इंडिविजुअल मस्ट बी पीस. इफ आई एम नॉट पीसफुल देयर इज नो वे आई कैन स्प्रेड पीस टू अदर्स. सो फर्स्ट इंडिविजुअल पीस. इंडिविजुअल पीस कैसे हमको मिलता है? जब हम स्ट्रेस फ्री होते हैं. हिंदी बेटर है ना? हिंदी या इंग्लिश? हाउ मेनी ऑफ यू प्रेफर इंग्लिश? हिंदुस्तानी. ओके. हिंदुस्तानी हिंदी. So, जब हम अपने भीतर हमको खुशी नहीं है, अमन नहीं है, पीस नहीं है, हम बाहर उसको कैसे पहुंचे? तो अपने भीतर पीस के लिए क्या करने पड़ते? सबसे पहले तनाव मुक्त जीवन में पहुंचना. ये सहज है. जीवन में तनाव होता है. तनाव का क्या कारण क्या है? बहुत कुछ हमको करना है, समय बहुत कम है और ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है. टू मच टू डू, टू लिटिल टाइम, बहुत कम समय है और ताकत नहीं है. अब अपना जरूरतें कम करो तो तनाव मुक्त हो पाएंगे हम. या अपनी जो एनर्जी लेवल है, अपना ताकत बढ़ाएं. ताकत मैंने सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं, सिर्फ शरीर का ताकत नहीं. ताकत मैंने अपना मन, मन ने भी ऐसे मजबूत किया है. तो ये बात हुई कि हमें ताकत कैसे बढ़ाना है हमारे भीतर. ताकत बढ़ाने के लिए ही, हमारे भीतर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए कई टेक्निक है. एक नहीं, बहुत है. इस देश में कुछ ही कुछ लोग इसको उपयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे और वो सबके लिए नहीं देते थे. क्यों? हम भारत देश में जाति के नाम से, धर्म के नाम से हम लोग इतने बटे हुए हैं और स्वार्थ, परिवार के अपना स्वार्थ के लिए बोलते थे ये किसी को नहीं सिखाना, वो किसी को नहीं सिखाना. कोई अच्छी बात हो तो क्यों नहीं सिखाया? मैं सबको सिखाऊं जिससे तुम्हारा सेहत ठीक होता है, जिससे तुम्हारा मगज अच्छा लगता है, मगज में अच्छा लगता है, शार्पनेस होती है, वो सबको सिखाना चाहिए. इसमें हम लोग बहुत इसको सीक्रेट रहस्यमय रखते. तो हमने कहा ये ऐसा नहीं होना चाहिए. तो हमने उसको कहा कि ये सब जो चीज सबके लिए अच्छा है, जैसे सांस लेने की क्रिया है और या कुछ एक्सरसाइज है, आसन है, ये सबका होना चाहिए. दुनिया में सब इससे लाभान्वित हो, ये मेरा मकसद था, मैं उसमें रिबेल करके मैंने कहा कि सबके पास ले जाएंगे। इससे आम आदमी खुश रहे, आम आदमी ने प्रेम रहे, मैत्री भाव रहे, एक दूसरे के साथ संबंध घर में समाज में, इस एक उद्देश्य से फिर हमने आर्ट ऑफ लिविंग का अब 35 साल पहले अपना शुरू किया। भारत में हम लोग हमेशा कहते रहते थे कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है, मगर वो परिवार कैसे होगा जब तक हम अपना प्यार को सब प्यार से सबको गले नहीं लगाते, नहीं हो पा सकते। तो एक खतनी करनी में भेद नहीं होना चाहिए। जो अभी आपने हमें सुना ना, वो आए थे कुरान की, जो जैसा बोलते वैसे चलो, जैसे चलते वैसे बोलो, अंदर एक बाहर एक ना करें एकदम। इससे जो बल मिलता है व्यक्ति के अंदर, एक आदमी के अंदर, वो अनूठा बल है, वो ऐसा बल है जिसको लेके फिर हम जीवन में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जैसे बोल रहे हैं, देखिए सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, आप भी साथ में बोल रहे हैं, मैं कुछ कहता हूं तो आप अपने अंदर हाँ हाँ ठीक है, एक मन चल रहा है और नहीं वो कैसे नहीं ठीक, ये नहीं, इस तरह से डायलॉग आपके भीतर चल रहा है, चल रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके प्रति हमें सजग होना चाहिए। जो हम कहते हैं वो आप माने ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो आपका मन कह रहा है उसको आप मानते हो क्या? यहां है, इसी को कहते हैं अवेयरनेस, प्रज्ञा, होश, जिसको होश कहते हैं। हम होश पूर्वक देखते मेरे भीतर क्या चल रहा है, और मेरे हिसाब से प्रशिक्षण या एजुकेशन माने होश बढ़ाने का कार्यक्रम, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, वो तो कंप्यूटर भी दे रहे। एक इंसान को इंसान बनाने का जो कला है वो एजुकेशन है, एक दूसरे से मिलजुल के कैसे रहे, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम निपटाएं, उसका सोल्यूशन कैसे लेके आए, ये हमारे भीतर एक कला है। तो हम सच्चे में एक इंसान है। आज देखिए दुनिया भर में इतना कॉन्फ्लिक्ट है, क्या हो रहा है गाजा में, आप देख लीजिए, बस खाना नजर नहीं होगा। इराक में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है। एक अच्छी बात है, हिंदुस्तान की मीडिया ज्यादा नहीं दिखा रही है, पर आप इंटरनेशनल चैनल घुमा के देखिए तो आप जी मचल जाए। हमने सुना एक रेणुमा जी से, प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि मुझे पूर्व से ठंडी हवा, तब हमने कहा हम ऐसे बनाए, हम सब लोग ऐसे प्रतिज्ञा करेंगे पूर्व से हमेशा ठंडी हवा आए, यहां से गर्मी की हवा कभी नहीं होने। साल पहले वो कह गए, पर आज भी हम उसको बरकरार बनाए रखेंगे। हिंदुस्तान दुनिया के लिए मॉडल बने, कैसे हम अलग 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 धर्म के अनुयायी सब इकट्ठे रहे। ठीक है, बात असल में धर्म के लोगों के साथ नहीं है झगड़ा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन या तनाव, अपने भीतर तनाव है तो अपने आपस में ही लड़ते रहते, घरों में लड़ाई होती, भाई भाई में लड़ाई होती। तो तनाव मुक्त जीवन जब तक नहीं हम जिएंगे, ना वर्ल्ड विश्व शांति होगी, ना जीवन में कोई प्रगति हो पाए। इसमें सबका प्रयत्न, सब अपना अपना कोशिश, सबका जारी रखना चाहिए। جتنا ہم سے ہو سکتا ہم کو کرتے رہنا. ادھر ایک سیٹ ہے, دیکھیے ادھر ایک سیٹ ہے نا, آپ ادھر پاس سن رہا ہوں, آپ دیکھیے ایک سیٹ شفٹ شفٹ کر لیں تو لاسٹ ہم چھوٹے وہاں پر بھی جگہ. اچھا میں ایک چھوٹا سا ایکسرسائز آپ سب کو دینا چاہتا ہوں, کرو گے کیا؟ Are you all ready?
Yes.
چھوٹا سا ایکسرسائز, آپ اپنے بازو میں جو بیٹھے ہیں آجو بازو میں تھوڑا سب لوگ سیٹل ہو جائے تو کھڑے ہو بھی آ جاؤ, آپ کو جگہ ہے جہاں جہاں کرسی ہے, آپ کے بازو میں یعنی خالی کرسی تو آپ ہاتھ اٹھائیے, جو کھڑے ہیں وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ سکتے. اچھا دو ایکسرسائز میں بتاؤں, میں تو صرف بھاشن میں اتنا وشواس نہیں کرتا ہوں, پریکٹیکل چیزوں میں وشواس کرتے ہیں. تو ایک کام کریں, آپ اپنے آجو بازو میں جو بیٹھے ہیں ایک بار گھوم کے ان کو گریٹ کریے, آئی بلونگ ٹو یو, ہم آپ کے ہیں, ایسے آپ گریٹ کر سکتے ہیں, کریے. آپ کے آجو بازو میں مجھے ہم آپ کے ہے کون, کر لیا آجو بازو میں نے بولا, آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں, ایک منٹ اور لے کے کر لیجیے جو آپ کے آگے پیچھے بیٹھے ہیں. ان سے نظر ملا لیجیے, آنکھ ملا لیجیے, ہم آپ کے ہیں, کر لیا. میں آپ سے ابھی ایک سوال پوچھنے والا ہوں, آپ نے سچ مچ کیا ہے کیا, یا ایسے اوپر اوپر کر دیں, پورا ایکسرسائز کروں, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, مگر آپ اپنے میں سوچو, ہے نا. دیکھیے ہم کئی بار کچھ باتیں بولتے ہیں نا یہ بڑی سپرفیشل, سوری بولتے ہیں, شکروار شکریہ بولتے ہیں, دھنیواد بولتے ہیں, یہ اوپر اوپر سے بولتے, وہ اندر سے دل سے نہیں آ رہا ہے. جب آپ پلین سے اترتے ہیں تو ایئر ہوسٹس کہتے ہیں اکثر ہیو اے نائس ڈے, اچھا ان کو کوئی پڑی نہیں ہے آپ کو اچھا دن دیتے ہیں, آپ کو اپنے ماں سے دادی ماں سے نانی سے دادا جی سے وہ بات سننے کو جب ملتا ہے اس کے ساتھ کچھ ترنگ آتے ہیں, کچھ وائبریشنز آتے ہیں, بیٹا خوش رہو. اب ماں نے کہا بیٹا خوش رہو, وہ اوپر اوپر کی بات تو نہیں, اس میں کچھ دل ہے بھائی, اس میں کچھ چیز ہے جو اثر کرتی ہے. جو ہمارے جیون میں ہم سب کے چاروں اور ترنگ ہیں, وائبریشنز ہیں, یہ وائبریشن سے ہم بہت کچھ کنوے کر دیتے ہیں. ہم پیس 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 چلانے سے لگتا نہیں ہے کوئی شانتی, بولنے والے کے نہ آواز میں شانتی ہے نہ ان کے ترنگوں میں شانتی کی محسوس ہوتی, ہمارے لفظ سے ادھک ہم اپنی موجودگی سے اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ ہے گھر پہ, ان کو ابھی لفظ بات بھاشن نہیں آئے, بولی نہیں آئے, آپ وہ آپ کے آنکھوں میں دیکھتا ہے, آپ کو پریم کا محسوس ہوتا ہے, محبت محسوس کرتے ہیں. ایک چھوٹا کتا ہے گھر پہ, جا جس ڈنگ سے وہ آ کے آپ کے چاروں اور گھومتا ہے, آپ دفتر سے, کالج سے, اسکول سے گھر آتے ہیں, وہ کتا پاگل ہو جاتا ہے آپ کو دیکھ کے. وہ ہے سچا پیار, سچا محبت. کیوں؟ ہم ترنگ سے, وہ ترنگ سے ہم کو کنوے کر دے رہا ہے. سو لفظوں سے, سو شبدوں سے کوئی بولے ہم آپ سے ہم کو بہت محبت ہے جی, بہت پریم ہے, اس سے وہ بات نہیں بھولتی. بنتے ہیں اچھا کی نہیں؟ تو اس طرح سے ہمیں کیا, تین چیزوں پر میں جوڑ دیتا ہوں, کیا کلیئرٹی ان دا مائنڈ, من میں کلیئرٹی ہونی چاہیے, پیوریٹی ان ہارٹ, ہردے شدھ ہونا چاہیے, اور سنسیئرٹی ان ایکشن, جو بھی کرتے ہو پورا ڈر کے کرو, دل دماغ کرنا. اب ایک اور ایکسرسائز کرو گے, آپ اپنے بازو میں جو بیٹھے ہیں ان سے بولیے, آپ پر میرا کوئی وشواس نہیں, آپ سے کوئی بھروسہ نہیں, آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ, پتی پتنی کے ساتھ بیٹھے تو یہی موقع ہے. کریے تو ایکسرسائز ہے, ایک منٹ کے لیے, ایک منٹ 30 سیکنڈ رہتا ہے. آپ اپنے بازو میں جو بیٹھے ان سے بولیے, آپ پر میرا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ نے کسی کو کہا تم پر میرا وشواس نہیں, پھر آپ بھی ہنسنے لگے, وہ بھی ہنسنے لگے, ایسا کبھی ہوا ہے؟ اچھا ایک تیسرا آخری ایکسرسائز کرنا, آنکھیں بند کر لیجیے, آنکھیں بند کر لیجیے, صرف 30 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر لیجیے, آگے سوچیے, دنیا کے سبھی لوگ بول رہے ہیں آپ سے, آپ پر ہم بھروسہ نہیں ہے, مجھے بھروسہ, آپ پر ہم وشواس نہیں کرتے, ایسے ساری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے, ایسے مانو, صرف 30 سیکنڈ کے لیے مانو, سب آپ کو شک کی دشٹی سے دیکھ رہے ہیں, ایسا مانو, آگے مت کرو, تھوڑی دیر, سب آپ کو شک کی دشٹی سے, یہ کوئی چور ہوگا, پتا نہیں کون ہے, اس طرح سے کوئی سوچ رہے ہوں گے. اب آنکھیں کھول دیجیے, کیسا لگا؟ بہت برا لگا نا, ہم چاہتے کوئی ہم کو شک کی درشٹی سے نہ دیکھیں, مگر کتنے لوگوں کو ہم شک کی درشٹی سے دیکھتے ہیں, بھائی دیکھتے ہیں کہ ترنگ کریٹ کر دیتے ہیں واتاورن ہمارے چاروں اور, ہم شک میں جب ڈوبتے ہیں دوسروں کے من میں بھی شک ہی پیدا کرتے ہیں, ہم جب پریم میں ڈوبتے ہیں تو دوسروں کے بھیتر بھی پریم ہی پیدا کرتے ہیں. یہ نیم ہے, پراکرتک نیم ہے. ہم کیا اپنے پر شک کرتے ہیں, دوسروں پر شک کرتے ہیں, اور ایک اور شک ہے وہ خدا ایشور کوئی ہے کہ نہیں, اس پر بھی شک کرتے. تین طرح کی شک ہوتی جیون میں, ارے کوئی دیکھا تو نہیں اللہ کو, کوئی ایشور کو دیکھا نہیں, بھگوان ہے کہ نہیں پتا نہیں, یہ شک بنا رہا من میں. اور دوسرا شک ہے ہمارے چاروں اور جو لوگ ہیں, سماج میں جو لوگ ہیں, ان سب کو شک کی دشٹی سے دیکھتے رہتے ہیں. جب ہم نہیں پسند کرتے دوسرے ہم کو شک کی درشٹی سے دیکھے, ہمیں بھی وہی چیز کرنی چاہیے کہ نہیں, میں یہ نہیں کروں سب سے وشواس کر لو, اپنا ہینڈ بیگ پرس کسی کو بھی سڑک میں دے کے کھڑے رہو, لے کے بھاگ جائے گا تو کیا, ये नहीं बोल रहा, मगर हम अपने भीतर हमारे मगज के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में हमको देखनी चाहिए, देखना चाहिए। ये काम हम बहुत ही कम करते हैं या करते ही नहीं है, यही देखना चाहिए। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारते, अपने भीतर खुशहाली नहीं जगाते, प्रेम और मोहब्बत की लहर नहीं उठाते, समाज में, परिवार में, समाज में, दुनिया में शांति प्रेम कैसे आया है। और उसमें सबसे पहले हमको देखना है जो जैसा है उनको वैसे स्वीकार करो। अब ये बताइए कितने लोग आपको मिले जो बिल्कुल आपके जैसे हो, मिले मिले तो बिल्कुल आपके जैसे नहीं मिले, मगर हम चाहते हर एक को मैं अपने जैसे बना, हम चाहते रहते हैं सब हमारे जैसे हो। मान लीजिए कोई आपके जैसे होते हैं बिल्कुल, आप 5 मिनट उनको बर्दाश्त नहीं कर पाए। बात तो यही है, सच तो यही है, अपने जैसे कोई हो जाओ उनको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग इसी प्रिंसिपल पर खड़ी है, क्या है, जो जैसा है उनको वैसे स्वीकार करो। देखो दुनिया में एक जीसस था, पता है कितने सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी में, 72 शाखाएं हैं क्रिश्चियनिटी की। पैगंबर मोहम्मद एक थे, अब कितने तरह के इस्लाम है, मेरे को जो पता है वो सब 5 तरह का तो है ही है, 5 तरह शिया है, सुन्नी है, अहमदिया है, सूफी है, सूफी सब अलग है, ये 5 तरह के इस्लाम तो है। बुद्ध एक थे, भगवान बुद्ध, 32 तरह की बुद्धिज्म है, कितने 32। और हिंदुइज्म में तो गिनती नहीं, हिंदू धर्म में तो गिनती नहीं कर सकते, जो संत हुए उनके अपना पंथ चल पड़ा, कबीर दास से उनके पंथ चल पड़ा। सिखिज्म में एक नहीं है, सिखिज्म में भी बहुत से पंथ। तो ये समय जैसे जैसे समय होता है अलग अलग फिलोसफीज आती हैं, अलग अलग संत आते हैं, अलग अलग धाराएं चलती है, विचारधाराएं। सभी विचारधाराओं को रहने देना चाहिए, इनको मिटाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अरे सबको एक समान बनाने की जो चेष्टा करते हैं, देखिए वही हो रहा है अभी सीरिया में, इराक में जो हो रही है, बहुत दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है। जब इराक में वहां युद्ध होने से पहले मुझे लगा वहां बहुत बड़ा आपत्ति आने वाला है, तो मैंने यहां दिल्ली से एक हमारे मित्र थे सरदार जी, उनका वहां बिजनेस था, उनके साथ में 2 डॉक्टर हमारे यहां कुछ लोगों को मैंने इराक को भेजा। वहां जाके तुम लोग बात करो, वह सदाम हुसैन जी के मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर अजीज, वो जाके उनको मिले, सदाम जी से भी मिलिए, उनको बोले कि आप ये युद्ध में मत जाना, वाद विवाद में मत जाना। मगर खैर वो लंबा कहानी तो काफी लंबा है, मगर वो हुआ नहीं, युद्ध तो शुरू हो गया, कोई माने नहीं। कभी ऐसा होता है तो मगज फिर जाता है, तो अच्छी बात सुनते नहीं। तो युद्ध हो गया, उस वक्त हमारा केंद्र बनाया वहां, केंद्र के बाजू में बम, रेड क्रॉस बिल्डिंग में बम गिरा, तो रेड क्रॉस सब लोग चले गए थे वहां से। फिर मैंने अपने लोगों को फोन किया कि तुम लोग वहां क्यों, अभी बहुत डेंजर सिचुएशन, तुम लोग आ जाओ। पता है उन्होंने क्या कहा, गुरुदेव अभी बाकी लोग तो सब चले गए, अब हम भी चले जाए, यहां लोगों को खदर कौन करने वाला है। 65 लोगों का डॉक्टर दवा सब लेके, हम रोज 700 पेशेंट देखते हैं यहां पर, हमको हम रहेंगे, आप चिंता मत करें, हमारे हमको आपका प्रेम है, या ईश्वर की रक्षा है, हम रह के यहाँ पूरा काम करें। 7 लाख महिलाएं विधवा हुई है इराक में। फिर हम 3 बार गए वहां, इतनी मोटी मोटी दीवार खड़ा कर दिया, शिया गांव अलग है, सुन्नियों का गांव अलग है। हम एक सुन्नी इमाम को ले गए शिया के गांव, जिस गांव से 8,000 फैमिली को भगा दी गई थी सुन्नी को। मैंने वहां बैठ के बात कर, देखो मेरे को भाषा भी नहीं आती है, अरबिक नहीं आती है, ट्रांसलेटर को रख के हमने वहां काफी चेष्टा की, उन लोगों से बातचीत करी, दोनों को बिठाया, समझाया, गले लगे दोनों, उनको इन्होंने स्वागत किया, एक माहौल बनने लगा। तो वहां के प्राइम मिनिस्टर बोलते, देखिए भारत में हमारे साथ एक जर्नलिस्ट आए थे, उन्होंने पूछा भारत से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भारत की रूहानियत हमको चाहिए। यहां हमारे देश में भारत की जो है सबको जोड़ने की कला है वो हमें चाहिए, आप हमारे युवाओं को ट्रेनिंग दीजिए। फिर 50 युवा गवर्नमेंट ने यूथ लीडर्स को भेजा बेंगलोर में, हमने उनको ट्रेनिंग दिया, आज तक 10,000 युवा इस तरह के तैयार हुए। मगर इतना बड़ा जनसंख्या है, 10,000 तो कुछ भी नहीं उसमें, 10,000 तो एक सबका अपना अपना काम है, धंधा है। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया भर में जो युद्ध आज चल रहे हैं वेस्टर्न इंटरेस्ट के कारण, अमेरिका को अपना वेपन बेचना है, जो फैक्ट्री नहीं तो वेपन फैक्ट्रियां सारी बंद हो जाएगी, गन से या बॉम्ब से जो भी ये बनाते हैं ये लोग बेचते रहते, दोनों को बेचेंगे, दोनों में लड़वा देंगे, दोनों को बेचेंगे। हिंदुस्तान में भी ऐसा कर सकते हैं, हिंदुओं को मुसलमानों से भिड़ा दो, हिंदुओं को भेजो मुसलमान को भेजो, और ये लोग अपना अपना मजे से लोग रह सकते। जो मैं सारे अमेरिकन की बात नहीं कर रहा हूं, ये गन लॉबी जो है दुनिया में जगह जगह है, सिर्फ एक देश की बात नहीं है ये। क्यों? मानवीयता चली गई है, पैसा ही पैसा दिखता है, पैसे के सिवा कुछ दिखता, अंधे हो गए लोग। आज क्या हो रहा है इजिप्ट में, सीरिया में, इराक में, कुर्दिस्तान में, बहुत दुखदायी है। अपने देश में देखिए, असम में, नागालैंड में, कश्मीर में, जगह जगह तो हम लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, अरे भाई दुनिया जीवन है बहुत कम समय के लिए, यहां मोहब्बत के लिए काफी पर्याप्त टाइम नहीं है, समय नहीं है, झगड़ा झंझट खून खराबा क्यों करते हैं। ये प्रश्न हम सबको पूछने पड़ेगा, इससे बनेगी एक नई दुनिया जहां पर जैसे तुम चाहे। देखिए हिंदुस्तान में यही, अब हिंदुओं में इतने देवी देवता है, कई लोगों को लगता है इतने देवताओं को पूछते हैं, नहीं नहीं भाई गलत अंडरस्टैंड, एक ही परमात्मा, एक क्यों सत्य पुरा बोधा बदंती अग्नि यमं मातरिश्वर नमामि, एक ही परब्रह्म एक ही है, मगर उनको अपना करने के लिए तुम किसी भी नाम से किसी भी रूप में तुम पूजना शुरू करो। ये कहते हैं पूजा भी, ये कोई मूर्ति को नहीं कह रहे, पूजा करें परमात्मा को। मूर्ति जैसे तस्वीर रखते हैं हम किसी का, तस्वीर तो आपके बच्चों का तस्वीर, बच्चे नहीं है मगर तस्वीर देखने से जैसे बच्चे के साथ का कनेक्शन लगता है, ऐसे मूर्ति से सिर्फ कनेक्शन के लिए रखा। अब गणेश फेस्टिवल कल ही हुआ तो पूछते गणेश की पूजा करके फिर उसको पानी में क्यों डाल देते, यही तो ऋषियों का बहुत अच्छा आइडिया था। और बोले पूजा माने क्या, भगवान जो तुमने मुझे किया मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं, खेल का नाम है पूजा, ईश्वर के साथ थोड़ी देर खेलो, बाद में वो तो मिट्टी मिट्टी है उसमें जाके विसर्जन करो। उसमें कहते मेरे अंतरात्मा में भीतर जो प्राण रूपी तुम हो थोड़ी देर तुम इस मूर्ति में आओ, मैं तुम्हारा तुमको रिझाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ में उत्सव मनाना चाहता हूँ। उत्सव होने के बाद कहते वापस तुम मेरे हृदय के कमल में चले जाओ करके उसको प्राण प्रतिष्ठा किया और उसको अंदर ले लेते, फिर जाके मूर्ति को विसर्जन कर देते। ये और किनको बोला? सन्यासी के लिए जरूरत नहीं बोले, एक ज्ञानी के लिए, योगी के लिए नहीं। योगी के लिए कहाँ है? ईश्वर अपने आत्मा में, अपने भीतर है, सब जगह। आप गणेश जी का वर्णन जो शंकराचार्य ने दिया, आप सुन के ताजुब हो जाएंगे। कैसे बोलते गणेश जी, तुम्हारा आकार क्या है? अजम निर्विकल्पम निराकार एकम। निराकार हो, तुम्हारा आकार नहीं, तुम एक ही हो। कुरान की पहले आयत में यही बात थी, जो अल्लाह का जो वर्णन है वही वर्णन शंकराचार्य ने दिया गणेश जी के। अजब, कभी जिनका पैदा ही नहीं हुआ, निर्विकल्प, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं, उनके अलावा कोई आई नहीं दूसरा। निराकार है, एक है, आनंद रूपी है, ऐसे गणेश परमात्मा रूपी उनको मैं भजता हूं अपने मन में। हमारे यहाँ क्या हो गया, हिंदू हिंदू धर्म को जाने नहीं, मुसलमान मुसलमान धर्म को जाने नहीं, ईसाई ईसाईत को भी जाने नहीं। हम इन बातों को जाने ही नहीं अपने मजहब में, क्या बात है? कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता दूसरों को जाके तंग करो, किसी का सिर पोड़ो, कोई तंग सिखाता है? पर ये क्यों हो रहा है? ढंग का धार्मिक शिक्षा है। मैं कहता हूं टाइम हो गया क्या? आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा माने वही जो सबको जोड़ता है, सार है सबका। कबीर ने, शरीफ ने, ऐसे कितने सूफी संत हुए, कितने वेदांत के महाविद्वान हुए हैं इस देश में, सब मन सब संतन का एक अंत है। ईरान में उन्होंने तीन चीज मानी, उन्होंने कहा पहले भारतीय रूहानियत हमको चाहिए, अध्यात्म आना चाहिए, लोगों को जोड़ने की कला आना चाहिए, इसमें ट्रेन कीजिए। दूसरा उन्होंने कहा आपके यहाँ आईआईटी में बहुत लोग बहुत होशियार है, हमारे युवकों को आईआईटी में ट्रेन दीजिए, आईटी में ट्रेनिंग दीजिए। तीसरा उन्होंने कहा भारतीय आके हमारे यहां तेल निकाले, ये हमारा ख्वाहिश है। अब बाहर वेस्टर्नर्स तो बहुत आके कर रहे हैं, तो भारतीय लोग भी आके हमारे यहां तेल का बिजनेस करें, ये तीन हमारा ख्वाहिश है। बोला खैर, वहां मैं यही कहता हूं, यदि सारे देश, दुनिया में जितने देश है, ये सारे देश जितना ये डिफेंस में खर्चा कर रहे हैं, इसमें से 0.1% भी ये लोग प्रेम शांति मोहब्बत को फैलाने में लगा दे, दुनिया बदल जाए। नफरत किसी को पसंद नहीं है, मत अनजाने में, अंधेरे में, तनाव में और दूसरों के भय से ये लोग ऐसे बनाए रखते हैं, लोगों में ये तनाव बनी हुई है और दूसरों के बातों में अपने लोग ऐसे काम कर रहे हैं। क्या ठीक है? मैं इतना ज्यादा बोलता तो ना, वैसे बीत तो आ गया, टाइम हो गया लगता है ना, मगर आखिर में एक बात ये कहना चाहूंगा। लेकिन हमको इससे पहले जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मैंने जो टॉक दिया वो पता है कहाँ? लाहौर के यूनिवर्सिटी, लाहौर में, पाकिस्तान में, 2012 में। हजारों युवा थे, वो हजारों युवा, मैंने ऑडिटोरियम काफी नहीं पड़ा, पर्याप्त नहीं पड़ा, तो बाहर भी स्क्रीन लगा के बाहर भी उन लोगों लगा था, उन युवाओं में भी ऐसे जोश था। तो मैं देखता हूँ पीपल टू पीपल हम कांटेक्ट देखते, कोई दुश्मन नहीं। वो कहते हम तो एक भगवान को मानते हैं, आप तो बहुतों को मानते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया, देखिए आप एक ही आटे में हलवा भी बनाते हो, रोटी भी बनाते हैं, पूरी भी बनाते हैं, देखिए आटा है, उसी से पिज्जा भी बनता है, उसी से नूडल्स भी बनता है ना, इतना अलग अलग क्यों बनाते हैं? नान भी, पराठा भी, रोटी भी, चपाती भी, पूरी भी, क्यों हम तरह तरह की चीजें पसंद करते हैं? ऐसे हिंदुस्तान में भगवान हम भी एक ही मानते, ईश्वर एक, मगर ईश्वर को अलग अलग कॉस्ट्यूम पहना देते हैं, वो यूनिफॉर्म एक ही नहीं रखता, यहाँ पर मिलिट्री रूल तो नहीं है, तो तुमने कहा यहाँ तो अलग अलग उनको अलग अलग पोशाक में अलग अलग नाम है, कुरान में 99 नाम है अल्लाह का, हिंदुइज्म में 101,008 है, और नाम के रूप साथ साथ एक एक रूप भी जोड़ दिया, इतना ही है लोगों का। ऐसे तो हमने किसी ने हमको समझाया, आज तक हम ऐसे समझते थे आप भगवान तो एक ही हो, दुनिया का तो एक ही होता, खुदा को, अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को एक ही है, दूसरा तो है नहीं, तो इस समझ में गड़बड़ है, समझाने वाले की कमी है ऐसा मुझे लगता है। इसलिए वर्ल्ड पीस आना हो पहले अपने में वो जगह है, नूर जगह है, अपने भीतर जो नूर है, अपने भीतर का नूर देख लोगे ना, कोई पराया लगते ही नहीं, दुनिया के हर बंदे हमारे अपने लगते हैं, वो होता है जब हम अपने भीतर जो नूर है जिसको कोई बुझा नहीं सकता है उसको हम महसूस करते हैं। और ध्यान, प्राणायाम, इन सबका मकसद एक ही है, अपने भीतर की नूर को पहचानना, बस इतना ही है।
शंकर जी से हम गुजारिश करेंगे कि वो गाइडेड मेडिटेशन के लिए हम लोगों को कुछ सिखाएं और गाइडेड मेडिटेशन कर पाए।
आपको मेडिटेशन चाहिए या कुछ प्रश्न है? कितने लोग ध्यान करना चाहते हैं? क्वेश्चंस हैं?
प्रोग्राम के हिसाब से तो मेडिटेशन ही हम लोगों ने प्लान किया है, उसके बाद कुछ देर का सवाल जवाब का सेशन भी है।
अच्छा, ये काम करते हैं, छोटा सा 5 मिनट का एक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? मैं सभी चाहे तभी ना, बहुत कम लोग चाहते हैं मेडिटेशन के लिए, सवाल जवाब ही रखी क्या? अच्छा बताओ कितने लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं? बहुत लोग चाहते
हैं, कॉल ये कह रहा है कि वो मेडिटेशन।
ओके ओके, यार आपकी फरमाइश। अच्छा भाई, लाइट्स थोड़ा कम करना पड़ेगा आपको, आप आ जा सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, ध्यान पता है क्या है? अब आप पांव नीचे देखे बैठ सकते, मुझे ऐसा बैठने की आदत है तो मैं आप लोग देखिए, ध्यान के लिए आप कंफर्टेबल बैठे, जिस पोजीशन में आप आराम से बैठ सकते हैं उस पोजीशन में बैठ जाए, ठीक है? हमारा शरीर मन सांस इन तीनों के प्रति हम सजग होने वाले हैं। शरीर को सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, अब आप दाहिनी तरफ देखिए, दाहिनी नासिका को देखिए, आंखों को बाएं तरफ घुमाएंगे तो दाहिनी नासिका दिखती है, दिख रही है, और बाएं नासिका को देखिए, अब दाहिने तरफ देखिए, फिर बाएं देखिए, आंखों का एक्सरसाइज हो जाएगा, दाहिने बाएं, दाहिने बाएं, अब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, भुवों को देखिए और नीचे देखिए, फिर दाहिने फिर बाएं, अब पलके मारने जोर से, जल्दी जल्दी पलके मारते जाइए, पलके थोड़ा भारी होने लगेंगी तब तक पलकों को फिर वो करते रहिए, मारते रहिए, अब आंखें बंद कर लीजिए। 98% आंखें बंद हो, थोड़ी सी खुली रहे, 1-2% आंखें खुली रहे, रीढ़ की हड्डी सीधा रहे, अपने ही शरीर के प्रति सजग हो जाइए। जब आप इस दुनिया में आए सिर्फ 4 किलो, 3 किलो, 5 किलो के थे, आज आप 50, 60, 70, 80, 90 किलो के हैं। अरबों खरबों अणु परमाणुओं से हमारा शरीर बना है। इस शरीर के एक एक कण में अनंत शक्ति है, बहुत शक्ति है। गहरी सांस लीजिए, आप अपना वजन को याद कर लें, जो भी आपका वजन है, अब सांस देख लीजिए, गहरी सांस, आंखें बंद रखें, सांस रोकिए, अब सांस छोड़ते वक्त अपना पूरा वजन को कुर्सी पर रख दीजिए जहां आप बैठे हैं, कुर्सी हमारा वजन ढो ही रही है, मगर हम अपना ध्यान वहां ले जाते हैं। विकम अवेयर ऑफ योर स्किन, त्वचा चमड़े को याद कर लें, वस्त्र के भीतर त्वचा है, उसके भीतर मांस है, हड्डी है, ہمارا شریر ایک ادبھت ایک انوٹھی اپہار ہے, تحفہ ہے, ہمیں قدرت سے ملا ہے. کندھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں, ہاتھوں کو بھی ڈھیلا چھوڑ دیں, پیر کو ڈھیلا چھوڑ دیں, پھر ایک گہری سانس لیجئے, بھریے پورا پھیپھڑوں کو سانس سے, اور دھیرے دھیرے اس کو باہر ہونے دیجئے, دھیرے دھیرے ہونے. ہمارے بھیتر بھی ہوا ہے, ہمارے چاروں اور بھی ہوا ہے. جیسے جل میں مچھلی, ویسے ہوا میں ہمارا شریر. ہوا نہ ہو تو ہمارا نہ ہم ہوں گے نہ ہمارا شریر ہوگا. جل میں جیسے مچھلی, ویسے ہوا میں ہمارا شریر. اس ہوا کو محسوس کریے, پھر ایک گہری سانس لیجیے اور دھیرے دھیرے سانس چھوڑیے. بھیتر آنے والی سانس شریر کو مضبوطی دیتی ہے, تو باہر نکلتے وقت شریر کو وشرام دلا دیتی ہے. وہی سانس, سانس پر دھیان دیجیے. شواس اور نشواس, ہر سانس کو ہوش پورک لیں گے اور ہوش پورک چھوڑیں گے. ہوش کے ساتھ سانس لے رہے ہیں اور مسکراتے مسکراتے سانس چھوڑیں. جب ہم مسکراتے ہیں ہمارے مغز میں, ہمارے مستشک میں سارے نس, سارے نر ناڑیاں, سنایو سب ڈھیلے پڑتے ہیں. تناؤ دور ہوتا ہے. پھر ایک گہری سانس لیجیے اور چھوڑیں. اپنا عمر یاد کر لینا, ابھی جو بھی ہے آپ کا عمر, اور 20-25 سال کے بعد آپ کا شریر اس زمین کے اندر چلا جاتا ہے. یہ سچائی ہے. آنکھیں بند رکھیے اور محسوس کریں اپنے ہی شریر کو. محسوس سانس ایک آیام, شریر دوسرا اور من تیسرا آیام ہے. شریر باتی ہے, من جوتی جیسا ہے. شریر کے چاروں جو بھی وچار آ رہے ہوں اس کو دیکھنا, اچھے برے سب آنے دیں, پھر آئیں گے اور چلے جائیں. اور ریلیکس کیجیے, ڈھیلا چھوڑ. جیسے شریر ڈھیلا ہوتا ہے تو ڈھیلا چھوڑتے شریر کو تناؤ مٹتا ہے اور من پھیلنے لگتا ہے. اب اپنا دھیان سر کے چوٹی پر لے جائیں اور سر کے اوپر خالی جگہ ہے وہاں پر اپنے من کو. مسکراتے مسکراتے کر گہری سانس لیجیے. ही शांति हो। यू आर पीस। ओम शांति शांति। धीरे से आप आंखें खोल सकते हैं। कितने लोगों को अच्छा लगा, पीसफुल लगा?
तुम कर पाए? तुम कर पाए?
15 मिनट आपने ध्यान करी?
वो करी कहाँ पे?
मैं तो तुम्हारा 16 मिनट है। कितने लोगों का टाइम का पता नहीं चला। और कितने लोगों को बहुत रिलैक्स लगा?
देखिए
मेडिटेशन ऐसा चीज है हर कोई कर सकता है। हमारा जो भी मजहब है जो भी है वो एक तरफ वो अलग है। ये तो खाली करने का मन को और विश्राम करने का तरीका है। ये मेडिटेशन किसी भी धर्म के साथ टकराव नहीं है इसका, इसलिए हर कोई कर सकता है। करना चाहिए, करने से अच्छा होता है। जैसे योगा करते हैं
ना। नाउ वी विल गो इन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा। और आप लोगों में से जो भी कोई कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, एनीबडी हु वांट्स हु हैज अ क्वेश्चन इन हिज और हर माइंड इज फ्री टू आस्क अ क्वेश्चन, बट उसको लिखित फॉर्म में करना, यू हैव टू राइट इट। सो प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है तो हमारे NSS2 वॉलंटियर्स हैं जो आपके पास कागज और कलम लेके पहुंचेंगे। दे विल रीच यू विद द पेपर एंड पेन एंड यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्टली देन स्वामी जी विल एड्रेस एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। So that's not the way I've been elected to conduct the program. I think the coordinator of the outreach program is coordinating this. So I request Dr. Mukesh Ranjan to please look at the questions and, you know, take over. में जो भी क्वेश्चन आ जाएंगे उनको स्क्रीन कर लेंगे और स्क्रीन जितने भी हो सकेंगे पॉसिबल ले लेंगे और उनका जवाब देंगे। स्वामी जी सर हम स्क्रीन नहीं कर रहे, हमारा मतलब है कि जितने सवाल पॉसिबल हो सकेंगे कि हमारे श्री श्री रविशंकर जी ले सके उतने ही सवालों का तो जवाब देंगे ना।
मीन वाइल आप पूछ सकते हैं, आप पूछ लीजिए।
मैं आपसे
जस्टिस कायम होनी चाहिए, यही है ना? बिल्कुल, हम तो हमेशा उसी के लिए खड़े रहते हैं। मगर आप ये नहीं समझिए जो हम कह रहे हैं वो सभी मान जाते
हैं।
ऐसा भी नहीं है कि हम तो कहते रहते हैं, मगर हम समय नहीं देते लोग अपना काम करें।
नेम है कोर्स और
कुछ सवाल हमारे पास आ गए हैं। हाँ। स्वामी जी मैं हाँ सवाल पढ़ती हूँ। Is this globalized? No, we are not allowed to speak from the audience, please. Please let me conduct the program the way it has been decided.
Okay.
We don't want any disturbance from the auditorium.
Okay.
All right. In this globalized world,
In this globalized world where there is so much to distract you, how do you think as a student we can concentrate? I think the student has not given his name, Swamiji, but sawal ye hai ki itne sare distractions hote hain aaj kal ki duniya mein, to hum ek student hain, kaise hum concentration apna badhaye?
Bhai aapko yahan se Agra jana hai, beech mein kitne sare dono side mein dukane hain, dusre kuch bhi hai, आप फिर भी पहुंच जाते हो ना, जब जीवन का एक लक्ष्य को आपने निर्धारित कर लिया तो डिस्ट्रैक्शन तो थोड़ा बहुत इधर उधर, कहीं पेट्रोल बंक में रुक गए, कहीं उधर खाना खा लिया, मगर आगरा पहुंचना ही है लक्ष्य, तो पहुंच ही जाओगे लक्ष्य।
दूसरा सवाल
ये
है कि स्टूडेंट को कैसे हाउ टू कोप विद द जेनरेशन गैप, जो प्रॉब्लम्स हमें जेनरेशन गैप यानी जो दो नस्लों के बीच में जो गैप महसूस करते हैं अपने बड़ों से, उसको कैसे कोप करें?
और बड़े युक्ति से कहना पड़ेगा भाई, बड़े स्किल से उनको भी समझाओ और अपना भी बात सामने रखो, उनकी भी सुनो और अपना भी जो माँ बात है वो युक्ति से सुनाओ। एक बात याद रखना, मगर जो बड़े कहते हैं उनके मन में हमारे लिए दर्द है, हमारे लिए हमदर्दी है हमारे बारे में, इसीलिए वो कहते हैं। इतना हमारे मन में याद रह जाए, हो सकता है उनकी तो पुरानी दंग हो या वो जानते भी नहीं हो कैसे क्या होता है, मगर उनकी जो इंटेंशन है वो बढ़िया है, उनका रास्ता हमसे अलग हो सकता है, वो समझाने से, बातचीत करने से, थोड़ा गिव एंड टेक करने से ठीक होगा।
एक और सवाल है, एक स्टूडेंट ने पूछा है जिसे नाम नहीं लिखा है, कि आपका इंस्पिरेशन कौन है, बाय होम आर यू इंस्पायर्ड?
हमारा इंस्पिरेशन कौन है? पहले तो हमारी माँ है, मेरी माँ के वजह से तो है।
एक सवाल ये है कि इनिशियली आई सी द बेस्ट इन पीपल बट एज टाइम पासिस आई फील वर्स अबाउट देम, मीनिंग जब मैं करीब से फिर देखने लगता हूँ या लगती हूँ तो फिर मुझे उनके बारे में फीलिंग्स बदल जाती, मेरी राय बदल जाती है, इनिशियली मैं बहुत अच्छा इम्प्रेशन कैरी करती हूँ, तो मैं कैसे, ऐसा क्यों होता है?
भाई इसका विपरीत भी सच है, कई बार पहले तो किसी व्यक्ति से हमारा अच्छा नहीं लगता था, उनके साथ भी थोड़ा समय तुम सबर करते हो तो बाद में वो अच्छे होने लगते, अच्छे लगने लगते हैं, दोनों बात सच है। इसलिए एक व्यक्ति के जीवन में ये साइकिल आता है, पहले बहुत अच्छे लगते हैं, फिर खराब लगते हैं, थोड़ा सबर करो फिर वो अच्छे लगने लगता
है।
सबर
तुम अपने मम्मी पापा से पूछो। प्यार से शादी कर रहे हो तो बीच में कुछ तो दोनों को बनती नहीं होगी, बस बाद में बन जाता है, जैसे बूढ़े हो जाते हैं सबका बन ही जाता है।
बहुत सारी समस्याओं का हल सब्र के साथ मेरे ख्याल से पाया जा सकता है, जैसे कि स्वामी जी हमें बता रहे हैं। एक सवाल एक स्टूडेंट ने पूछा है, इनका नाम अलीना खान दिया है, कि यूथ हैं हम लोग, सो वी आर बीइंग यूथ, हाउ विल यू गाइड अस टू एलिमिनेट द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट? डिफरेंसेस मतलब आपस में जो लोगों को इख्तलाफ आया, आई मीन दे डोंट अग्री द कॉन्फ्लिक्ट, आई थिंक शी मीन्स, शी डजंट मीन डिफरेंसेस बट कॉन्फ्लिक्ट जो है, उसमें यूथ किस तरह से उनको मिटाने की कोशिश करे?
डिफरेंसेस को रिकग्नाइज करो, स्वीकार करो, मिटाने की चेष्टा करो, वो ही इज डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, एंड लाइक वी कैन बी टुगेदर, दिस मच विजडम वी नीड टू हैव। You know, if you get on to Shri, I keep giving many tweets on small tweets like this time to time. Hindi mein bhi aur Angrezi mein bhi tweet karta rehta hoon. At Shri Shri mein dekhiye, ya Facebook mein bhi aap dekh sakte ho.
एक सवाल है, what is the secret of a peaceful and successful life?
वही तो मैं अभी तक बताया। जो एक्सेप्ट करो जो सिचुएशन जैसा, हम वर्तमान में रहना, हम पुरानी बीती हुई बातों को लेके अपने मन को खराब करो, दूसरों का खराब करो, ये मैं समझता हूँ। वर्तमान में जीने से वर्तमान में रहते हैं।
एक सवाल चेतन नाम के एक सूत्र ने पूछा कि मैं अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल
कर सकूं। सांस के जरिए गुस्सा आता है ना, थोड़ी देर सांस के अलग अलग टेक्निक्स हैं, उनमें से दो चार भी तुम अपना लो तो बन जाएगी बात।
एक सवाल है कि एग्जामिनेशन टाइम में जो स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड फील करते हैं तो ऐसे में क्या विकल्प बताएं?
मेडिटेशन 20 मिनट का मेडिटेशन में तुम्हें इतना एनर्जी मिलेगा, आजकल साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं 20 मिनट का मेडिटेशन इज इक्वल टू 6 आवर्स ऑफ स्लीप। 6 घंटे नींद में जो ताकत मिलती है उतना ताकत 20-25 मिनट अच्छे से तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान सीख के करोगे, उसमें मिल जाता है। पता आपको पता मैं कितने घंटे काम करता हूँ? गेस। 20 से 21 घंटे करता हूँ, 20 घंटे, 3 घंटे सोते हैं हम।
हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर साहब हैं शब्बीर अहमद अलवी साहब, हमारे जामिया के सिक्योरिटी एडवाइजर, इनका सवाल इनकी तरफ से।
बुद्धिमान हो तो वो असेट है, बेवकूफ हो तो वो ऑब्स्टिकल है। हर हर मजहब में खुद खूबियां हैं, वो जीवन के लिए इंस्पिरेशन होता है, जीवन को जीवन तक खिलने के लिए वो मददगार हो। मगर हम ना समझ हो उसी मजहब को देखे, उसी धर्म को देखे, खुद भी परेशान रहेंगे, दूसरों को भी हालत खराब रखेंगे। इसलिए हम पर निर्भर है, मजहब के अपने में नहीं, जो उसको इस्तेमाल करता है उस पर निर्भर करता है। एक चाकू है उसमें, उसको लेके तुम सब्जी भी काट सकते हो, मक्खन भी काट सकते हो, अपने आप को भी हाथ को भी काट सकते हो, ऐसा।
बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये
वन लास्ट क्वेश्चन बहुत है।
We have received, you know, hundreds of questions, you know, and owing to time constraint, it's not possible to take all the questions. What we intend to do is we'll pass on all the questions to the Art of Living Foundation so that we can get suitable reply at some
sure,
point.
Sure, sure. I will. We can send it through email to you if you have written your email address. And definitely, I would like to take all type of questions, controversial, non-controversial. I don't mind any questions. Okay. So you send me also gurudev@artofliving.org. If you send your questions, then I'll see as soon as possible and answer. It will take some time, okay?
थैंक यू। एक और बात कहनी थी कि हमारे बीच ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री महेश गिरी जी हैं, तो हमसे गुजारिश करेंगे कि उनको गुलदस्ता पेश करके उनको फेलिसिटेट करें और ऑडियंस से चल पाते हैं।
क्षण है और मुझे भी नहीं समझ आ रहा क्या करूं कि जिनकी कृपा है, जिनका आशीर्वाद है, जिनके संस्कार लेकर के मैं बड़ा हुआ हूं और उसी संस्कारों से सेवा को अपनाया और उसी सेवा से राजनीति में आना हुआ और वही सेवा को माध्यम बनाते हुए आप सबके बीच में हूं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव आज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं। मैं दिल से गुरु जी का स्वागत करता हूं और उनके पूज्य चरण इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पढ़ चुके हैं, तो मुझे अब पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है कि गुरुजी यहाँ पर ओखला क्षेत्र जो है, मैं जब राजनीति में नहीं था और आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से यहाँ पर मैंने बहुत यात्राएं की है, मानवता यात्रा निकाली थी, और यहाँ पर जाकिर नगर का जो पूरा एरिया है, बाटला हाउस का पूरा एरिया है, यहाँ की बस्तियां है, इन क्षेत्र में जब मैं घूमा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जिस तरह की यहाँ पर बस्ती है और जो सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए इन पिछले सालों में, गुरुजी मैं शायद मैंने हिंदुस्तान का ऐसा चेहरा कभी देखा नहीं था, वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिली। यहाँ पर पानी गुरुजी लगभग मुझे लगता है जहां से जब से बसे हैं यहाँ के लोग उनको अभी तक नल से पानी नहीं मिलता गुरुजी, ये वास्तविकता है यहाँ की। आज भी यहाँ पर पानी के बहुत बड़े बड़े माफियाज हैं, आज भी ये लोग बॉटल से बैरल से खरीद कर पानी पीते हैं और जो मन चाहे चार्ज वो चाहते वैसा उनको देना पड़ता है। सुविधा के नाम पर यहाँ पर कभी कुछ नहीं हुआ है पिछले वर्षों में, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। मैं अभी अभी सेवा के क्षेत्र से अचानक चुनकर आ गया हूँ और जब मैंने यहाँ की हालत देखी थी तो बहुत बुरा लगा था कि लोग रह कैसे सकते हैं। बरसात के दिनों में यहाँ पर सीवर फुल हो जाते हैं और जब यमुना में उफान आता है तो पता नहीं होता कहाँ रहे कहाँ नहीं। मुझे कभी कभी तो मैं जब आया था बरसात के मौसम में तो जिस तरह के मच्छर थे, तारीख था मेरे साथ टीचर अपना, तो गुरु जी मैं चल रहा था तो मुझे देखा इतने सारे मच्छर, तो ऐसे लगा मच्छर एफआईआर दर्ज करवा रहे कि हमारी बस्ती में इंसान बसने आ गए। ऐसी हालत थी। मैं केवल इतना ही चाहूंगा गुरु जी, आपके संस्कार है जो आपने बात की, मैंने नोट भी किए कि क्लैरिटी इन माइंड, प्योरिटी इन हार्ट एंड सिंसियरिटी इन एक्शन। मैं आपके चरणों में वचन देता हूं कि ओखला मेरे लिए एक ऐसा क्षेत्र है, चैलेंजिंग है, पर इनके सपने पूरे करने के लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जरूर।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री महेश गिरी। वी नाउ प्रोसीड विद द प्रोग्राम। देर इज अ मेमेंटो विच विल बी गिवन टू श्री श्री रविशंकर जी ऑन बिहाफ ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, विच विल बी प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर गजनफर जैदी साहब, हु इज द डीन ऑफ द फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स। सो इट्स अ स्मॉल टोकन दैट जामिया मिलिया इस्लामिया वुड लाइक टू एक्सटेंड टू श्री श्री रविशंकर जी। Dr. Mukesh Ranjan, coordinator of the outreach program of Jamia Millia Islamia, to extend a vote of thanks.
Thank you, Mara. Thank you, Sri Sri, for an engaging presentation, stress relieving meditation, path guiding question answer session. Every word spoken by you has illumined our minds and will certainly motivate us to virtuous action. Your commitment to human values with love, compassion and enthusiasm and sensitivity to modern day predicaments will inspire us to think differently. We in Jamia Millia Islamia fully appreciate that love, compassion and enthusiasm are not limited to any one religion and culture. They go beyond all human-made frontiers. Human values are open to all people, and we as human family share this spiritual bond. We shall strive to create violence-free world to realize world peace and global harmony. Besides making efforts to have a better India, free from violence, disease, confusion and trauma. I, on behalf of Outreach Program Jamia Millia Islamia, thank you for having agreed to interact with Jamia students, faculty and staff this afternoon. I thank all the AOL volunteers, trustees, national, regional and local coordinators for helping the Outreach Program to organize this event, and for this person and for their personal involvement and support. I also need to thank Lieutenant General S.A. Hussain, Mr. Saidin Abbasi, Mr. Shakil Ahmed, Mr. Ashish Bhutani, all joint secretaries with various ministries of Government of India, and Mr. Ariz Ahmed, Director MHRD, for having joined us this afternoon to be part of this illuminating session. Having thanked all our guests from outside Jamia, I need to thank everybody in Jamia Millia Islamia for the success of this program. In this regard, I would like to thank the security advisor and his entire security team, the chief proctor and his proctorial team along with the security assistants. My special thanks are due to the Dean Students Welfare and her support team for all the logistical support in the auditorium. Special thanks are also due to the officer on special duty and his entire administrative team and his collaborative partners from the electrical, sanitation and horticultural wings of the university. I certainly need to thank our NSS coordinator and the NSS volunteers for the smooth execution of the event. Finally, a very big thank you to all the students, colleagues, staffs and other guests in the audience for coming to this event and making it a huge success. Thank you. We have made arrangements for refreshments. Students would pick up their refreshment boxes from the lawns adjacent to the English department, and the teachers and guests are requested to proceed to Nehru House for refreshments. Thank you.